दाल बाटी राजस्थान की शान, राजस्थान की प्रसिद्ध डिश। स्वास्थ्य और स्वाद के लिए जानी जाती ये राजस्थानी डिश पूरे भारत की लोकप्रिय डिशों में से एक है। इनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या हम इस डिश के बारे में, इस वानगी के इतिहास के बारे में जानते हैं? तो चलिए आज मैं ले चलती हूँ एक ऐतिहासिक सफर पर कि जिसमें हम जानेंगे कि दाल बाटी किस तरह से उसके वर्तमान रूप में बनी। माना जाता है कि राजस्थानी खाना दाल बाटी राजस्थान के खास करके मेवाड़ प्रदेश का खाना है। कहा जाता है कि मेवाड़ राज्य के स्थापक बाप्पा रावल के समय पर बाटी का उद्भव हुआ, या यूं कहें कि बाटी बनाने की शुरुआत हुई। बाटी योद्धाओं का खाना कहा जाता था क्योंकि युद्ध के दौरान बाटी का संग्रह करना और बाटी के स्वास्थ्य के लाभ से ये योद्धा बखूबी वाकिफ थे और इसीलिए युद्ध में वो बाटी को अपने आहार के तौर पर ले जाते थे। जब राजस्थानी योद्धा लड़ाई करने जाते तब गेहूं, दूध और घी से बनी बाटी को रेगिस्तान की रेत में गहरा गड्ढा खोदकर दाट देते थे। पूरे दिन के सूर्य प्रकाश और गर्मी में ये बाटियां खुद ब खुद पक जाती थी और हमारी आधुनिक भाषा में कहें तो वो बेक हो जाती थी। जब शाम को ये योद्धा वापस आते तब इस बाटी को निकालते और उसे बकरी या ऊंट के दूध से बने दही के साथ भोजन में लेते। इस तरह से बाटी प्रचलित तो थी, लेकिन बाटी को दाल के साथ खाने का रिवाज आया मेवाड़ के गुप्ता वंश के साथ। गुप्ता वंश के एक बावर्ची ने मूंग, चना, तूर, मसूर और उड़द की पांच दालों को एक साथ करके बनाई पांचमल दाल, और तब से लेकर ये पांचमल दाल के साथ बाटी प्रसिद्ध हो गई। अब आप कहेंगे कि दाल बाटी के साथ चूरमा तो होना चाहिए क्योंकि चूरमे बगैर बाटी कहीं ना कहीं अधूरी लगती है। तो दोस्तों आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चूरमा गलती से बनी हुई डिश है। जी हाँ, ये जो मिठाई है वो गलती से अस्तित्व में आ गई। कहा जाता है कि मेवाड़ के गहलोत राजा के जो राजमहल के बावर्ची थे वो कुछ दाल बाटी बना रहे थे, लेकिन गलती से कुछ बाटियां गन्ने के रस में गिर गई। बावर्ची का ध्यान नहीं रहा होगा तो थोड़ा समय ये बाटियां उस रस में डूबी रही। जब इस बात का ध्यान आया तब घबराए हुए बावर्ची ने मुख्य बावर्ची को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन बावर्ची को सुखद आश्चर्य ये जानकर हुआ कि मुख्य बावर्ची को ये मीठी बाटी बहुत पसंद आई और फिर ये मीठी बाटी पहुंची राजा और उनके अधिकारियों के पास। यहाँ पर भी इस बाटी की बहुत प्रशंसा हुई। एक तो ये बाटी मीठी थी, ऊपर से खाने में बहुत नरम थी और इस बाटी को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता था। और यहाँ से इस बाटी का चूरा बनाकर अस्तित्व में आया चूरमा। हालांकि इस मीठी बाटी को चूरमे का रूप दिया मेवाड़ की गृहिणियों ने, जो अपने पति के लिए बार त्योहार पर इस प्रकार की मीठी बाटियां बनाती थी। राजस्थान की ये दाल बाटी चूरमा राजस्थान से बाहर ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही महारानी जोधाबाई की। महारानी जोधाबाई के साथ ये राजस्थानी दाल बाटी चूरमा पहुंचा बादशाह अकबर की रसोई में। यहाँ के शाही बावर्चियों ने इस पारंपरिक खाने के साथ कुछ प्रयोग किए और दाल बाटी जैसी ही एक नई वानगी अस्तित्व में आई, जिसका नाम है बाफला खीच। आज भी बाफला मध्य प्रदेश के इलाकों में बहुत ही प्रसिद्ध डिश है। बाफला वैसे तो दाल बाटी की बाटी जैसे ही बनता है, लेकिन बाफला को बेक करने से पहले, पकाने से पहले बॉईल किया जाता है। कई कई बार बाफला मक्के के आटे के साथ बनाया जाता है। बाफले के साथ खाई जाती है खीच। खीच बाजरे या गेहूं का दलिया स्वरूप है। बाफले के साथ बहुत ही प्रसिद्ध खीच के साथ जुड़ी हुई बहुत ही प्रचलित कथा है। इसके अनुसार जैसे ही रानी जोधाबाई दाल बाटी चूरमा को शाही दरबार में ले गई, उसी तरह से वहां बनी खीच बाफला राजस्थान में प्रसिद्ध हुई। एक कथा के अनुसार मेवाड़ के राजा कुंभा आक्रमण से बचते हुए चित्तौड़ से भाग रहे थे, तब वो खाने के लिए एक किसान के घर पर पहुंचे। वहां उन्हें भोजन में खीच परोसा गया। राजा ने अपनी उंगली खीच के बीचों बीच डाली और उनकी उंगली जल गई। उसे देख और राजा की पहचान से अनजान किसान की पत्नी बोल उठी। उन्होंने कहा कि आप भी हमारे राजा जैसी ही गलती कर रहे हैं। खीच बीच में गर्म होती है और आजू बाजू में ठंडी होती है, इसीलिए खीच को खाने की शुरुआत हमेशा बाजुओं से करनी चाहिए। इस ताने से राजा को जैसे एक बहुत ही अच्छी युक्ति मिल गई अपना राज्य वापस लेने की, और इसी युक्ति का पालन करते हुए राजा ने बाहरी किलों पर आक्रमण करके वहां पर जीत पाई और उसके बाद मुख्य किले पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस ले लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दाल बाटी चूरमा जैसी ही एक अन्य वानगी लिट्टी चोखा वो प्रसिद्ध है बिहार में। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि लिट्टी चोखा कहां से उद्भव हुआ और कैसे उद्भव हुआ, लेकिन माना ये जा रहा है कि मुगलों के शासन के दौरान ही दाल बाटी पर हुए प्रयोगों में से कुछ प्रयोग के द्वारा ही ये लिट्टी चोखा बना होगा। लिट्टी चोखा में लिट्टी यानी कि बाटी, इस बाटी को चने के आटे और अन्य दालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। लिट्टी के साथ खाया जाता है चोखा। चोखा बनाने में बहुत आसान है, ये बहुत ही बैंगन भरते से मिलता है। कहा जाता है कि लिट्टी चोखा रानी लक्ष्मीबाई की सबसे पसंदीदा वानगी थी। अगर ये तीनों वानगियों की तुलना की जाए तो लिट्टी चोखा ज्यादा मसालेदार और ज्यादा तीखी डिश है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पे ये तीनों डिशेस ट्राई कीजिएगा और SBS हिंदी के फेसबुक द्वारा हमें बताइएगा कि आपकी पसंदीदा डिश क्या है, दाल बाटी चूरमा, बाफला खीच या फिर लिट्टी चोखा।